Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Mohan Chaitangaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Okay, Gini. तो घट में जैसे संशय नहीं हो रहा है, घट ज्ञान में जैसे संशय नहीं हो रहा है, प्रमाता में भी संशय आपको, अप्रमाता विशिष्ट हो गया। देखो इस बात को ध्यान दीजिए, अहम घटम जानामि, तो घट जिस चेतन से प्रकाशित होता है, घट ज्ञान भी जिस चेतन से प्रकाशित होता है, अहम अर्थ जो प्रमाता है ना, वो भी भाषित हो जाता है, विशिष्ट चेतन भाषित हो जाए। हो गए कि नहीं? तो जा फिर किससे प्रकाशित हो गया? वो साक्षी हो गया। हो गया कि नहीं? और वो ये साक्षी है ना, वो निर्विशेष हो गया है। देखो है ना, अपने से सबको हटा दिया। देखो सबको हटा दिया, यदि नहीं हटाएंगे तो आप विशिष्ट हो जाएंगे। आ गया ना, मन के साथ आपने तादात्म्य कर लिया, चक्षु इंद्रिय के साथ तादात्म्य कर लिया, तो आप प्रमाता हो गए। लेकिन विचार करेंगे, भाई हमारा मन भी तो जाना जा रहा है, रूप का जो ज्ञान हो रहा है वो भी तो जाना जा रहा है ना, अपने से सब आपने सब कुछ निवर्तन कर दिया, तो आपका स्वरूप कैसा हो गया? ये साक्षी, इसी का नाम साक्षी है ना। फिर वो कैसे प्रकाशित होगा भाई? हाँ, इसी का नाम क्या है? संप्रकाश है ना। उसका भान के लिए और किसी भान की जरूरत नहीं है ना। तो देखो, घट ज्ञान को जिसने सत्ता दिया, हो गया ना, घट ज्ञान को जिसने सत्ता दिया, घट ज्ञान को प्रकाशित भी वही किया। इसलिए जिसका स्वरूप सत्ता है, सत है, उसका स्वरूप ज्ञान भी, सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये स्वरूप लक्षण हो गए। देखो है ना, इसलिए उसके प्रकाश के लिए जो सत चेतन है, उसके प्रकाश के लिए और प्रकाशांतर की अपेक्षा नहीं होती है। यदि मानेंगे तो अनवस्था दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? हाँ, अनवस्था दोष हो जाएगा। इसलिए जिस साक्षी के द्वारा ज्ञात घट प्रकाशित होता है, घट यदि है तो घटम अहम जानामि, तो किस घट का प्रकाश हो गया? ज्ञात घट। ज्ञात घट मतलब जानते हैं, तो घट के साथ साथ घट ज्ञान का ही प्रकाश हो रहा है, उसको कहते हैं ज्ञात घट। घटम अहम जानामि है ना, केवल घट प्रकाशित नहीं हो रहा है, घट का ज्ञान, घटाकार वृत्ति, घटाकार वृत्ति रूपी जो ज्ञान है वो भी प्रकाशित हो जाता है। हो गया कि नहीं? और घट यदि नहीं है तो घटम अहम न जानामि, हाँ, अज्ञात घट, इसको क्या बोलेंगे? हाँ, चाहे ज्ञात घट हो चाहे अज्ञात घट हो, एक ही चेतन से ही प्रकाशित होगा। इसलिए ज्ञाततया अज्ञाततया वा सर्वम साक्षिभाष्य, चाहे घट ज्ञात हो चाहे घट अज्ञात, सबको वो साक्षी प्रकाशित करेगा। और साक्षी का प्रकाश के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती, विचार करेंगे तो अनुभूति हो जाएगी। हो गई क्या? हाँ, इसीलिए परमाता च प्रमाणम च प्रमेयो प्रमितिस्तथा यत् प्रसादा सन्निध्यन्ते प्रसिद्धन्ते तत्सिद्धो किम् अपेक्षते। परमाता, प्रमाण, प्रमेय, ये देखो है ना, अहम घटम जानामि, अहम अर्थ हो गया प्रमाता, अविभाषित हो रहा है भाई, हो गया ना, ये चक्षु हो गई प्रमाण, प्रमाण 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 हो गई कि नहीं? अप्रमेय घटपटादि प्रमेय हो गया, पकड़ में आया? प्रमा कभी समझ लो घट का ज्ञान है ना, प्रमिति कह दिया ना आगे, प्रमिति घट का ज्ञान, वृत्ति, ये सब के सब जो है उसी के प्रकाश से, यत् प्रसादात् प्रसिद्धन्ति, उसके प्रसाद से, प्रसाद मतलब प्रकाश, ओके कि नहीं? प्रसाद जो ग्रहण करते हैं कि नहीं, भोग लगा करके, और प्रसाद क्या है? ज्ञान रूपी प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रसाद, प्रसाद, वो ज्ञान रूपी प्रसाद हमको प्राप्त हो रहा है। हो गया कि ये जो है, ये भावना की, भावना तो क्या है ना, भक्ति में भावना की प्रधानता है, हो गया ना। और ज्ञान में भी विचार की प्रधान आता है, ज्ञान में विचार की प्रधान आता है। विचार यदि नहीं हो रहा तो ज्ञान नहीं होगा, सुनते रहेंगे जीवन भर। पुण्य तो होगा लेकिन विचार के बिना ज्ञान नहीं होता है, हो गया ना। इसलिए श्रवण के साथ 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 में क्या करना चाहिए, विचार भी करता है भाई, हमको अनुभव आ रहा है कि नहीं, ऐसे की ऐसे ही केवल रट रहे हैं, विचार करना चाहिए कि नहीं, है ना। हाँ भाई, आपने रट लिया सर्वम कलेदम ब्रह्म आराम अहमअस्मि ब्रह्म, रट तो लिया भाई ब्रह्म कहने से। हाँ किसको ले रहे हैं भैया, अहम अर्थ से आप किसको ले रहे हैं, विशिष्ट को ले रहे है कि जो है निर्विशेष को ले रहे है। तो निर्विशेष को समझ करके यदि ब्रह्म के साथ एकत्व करते तब तो ठीक है ना। और आम हम बोल रहे हैं और शरीर के साथ अधात्म हो रहा है, नहीं जा रहा है, तो ज्ञान कहां से होगा, विचार करना चाहिए। तो देखो भाई, तो ये बात यहां पर कहते हैं, ये ना जिस साक्षी चेतन के द्वारा ये रूप आदि जितने भी विषय है वो जाना जा रहा है वो अपना स्वरूप, उसका पारमार्थिक स्वरूप है और पारमार्थिक आनंद है ना। तो इसीलिए उस स्वरूप में ही आनंद का अन्वेषण करना चाहिए। हे नचिकेता, जिसके बारे में तुमको संशय हो रहा था, जिज्ञासा हो रही थी
कि शरीर छूटने के बाद आत्म तत्व है कि नहीं है, यही आत्म तत्व है। देखो इसलिए जमराज जी कहते हैं एतेनैव विजानाति, इस साक्षी चेतन के द्वारा ही सारा जगत जाना जा रहा है। इसलिए उस साक्षी चेतन से कोई भी अज्ञात नहीं रहता है, जो भी जाना जाएगा साक्षी चेतन से ही जाना जाएगा, जड़ से नहीं जाना जाएगा, हो गया ना। ये चैतन्य किसी का धर्म नहीं है। तो चारवाग लोग बोलते हैं भाई ये चैतन्य क्या है, ये पृथ्वी जल तेज वायु ये चारों मिल गए तो चैतन्य आ गया, ये बोलते नहीं चार वाले लोग। तो चैतन्य को आत्मा का स्वरूप मानने की क्या जरूरत है। हाँ दृष्टांत देते हैं ना भाई, मान लीजिए पान खाते हैं हाँ, तो उसमें क्या पान का पत्ता रहता है और कत्था और चूना, और तीनों चीज मिल गए मुंह में डाल दिया तो लार आ जाता है कि नहीं, तो लार किसका धर्म है, तीनों का धर्म है कि नहीं है? तीनों के मिश्रित का फल ही क्या है, लाल हो जाता है कि नहीं। तो इसी प्रकार से चारों भूत मिल गए तो चैतन्य आ गया, आकाश को नहीं मानता है। पृथ्वी जल तेज वायु ये जब मिल गए माता के गर्भ में तो जो चैतन्य आ गया और क्या है, है? तो ये विचार का कोई आधार ही नहीं है, ना कोई शास्त्र का आधार है ना कोई अनुभूति है, है ना। तो हमारा शास्त्र क्या है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। तो आत्मा का स्वरूप कैसा है, विज्ञान 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 मतलब ये घट ज्ञान पड़ ज्ञान ऐसा विज्ञान ही समझना है, है ना। तो जिस चेतन से घट का ज्ञान भी प्रकाशित हुआ उसी का नाम क्या है, विज्ञान, है ना। विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम, विशिष्ट मतलब निर्विशेष, हो गया ना, अबाधित। जिससे पट ज्ञान हो गया था घट ज्ञान नहीं, और जिसमें घट ज्ञान हो रहा था पट ज्ञान नहीं, जिसमें जागृत का ज्ञान हो रहा था सपना का ज्ञान नहीं, और सपनों में गए तो सपनों का ज्ञान है जागृत का ज्ञान नहीं। ये जितने भी विशिष्ट ज्ञान है व्यवचरित ज्ञान है, व्यवचरित। लेकिन स्वप्न को जानने वाला जो चेतन है, जागृत को जानने वाला जो चेतन है वो कैसा है, अबाधित अव्यविचरित। इसलिए शास्त्र जिसको चेतन बोलता है, व्यवहार में जिसको चेतन बोलते हैं वो चेतन नहीं, हो गया ना। और शास्त्र जिसको आनंद बोलता है, व्यवहार में जिसको आनंद बोलते हैं वो नहीं। यदि उसी को यदि आनंद माना जाएगा तो ज्ञात का ज्ञापक हो गया, अज्ञात का ज्ञापक नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए शास्त्र का शास्त्रत्व क्या है, अज्ञात ज्ञापकत्वम शास्त्र, ज्ञात का ज्ञापन नहीं करता हमारा शास्त्र, हो गया ना। इसलिए संसार की बात नहीं करता है। तो जहां पर संसार की चर्चा होती है ना, है ना, उसका कुछ अलग ही प्रयोजन होता है। हाँ, जिस कथा कहानी होती है उपनिषद में कथा कहानी आती है,
तो कथा कहानी का प्रयोजन कथा कहानी में नहीं रहता है। भाई इंद्रियों में लड़ाई हो गई, इसका तात्पर्य लड़े में नहीं है ना, ये सब समझ लेना चाहिए। जहां जहां पर कहानी आती है समझ लेना चाहिए। तो जो लोग चार भाग लोग जो है हैं, चार भूतों का धर्म को ही चैतन्य मानते हैं, कत ऐसा नहीं हो सकता है ना। जैसे देखो घट का धर्म हो गया रूप, घट का धर्म हो गया रूप, उस रूप के द्वारा किसी का प्रकाश नहीं होता है ना। रूप जैसे घट का धर्म है वो उससे किसी का प्रकाश होता नहीं है। इसी प्रकार चैतन्य यदि भूतों का धर्म मानेंगे, रूप जैसे घट भूतों का पृथ्वी का धर्म है, तो धर्म होने के कारण वो जड़ हो जाएगा। कोई भी धर्म जड़ी होता है और कोई भी धर्म अनात्मा होता है, ठीक है। सत्य चैतन्य आनंद ही आत्मा का धर्म नहीं है, अभी तो आत्मा का स्वरूप है। आत्मा अलग है चैतन्य अलग है ऐसा नहीं होता है। इसलिए चैतन्य आत्मा को छोड़कर कभी रह नहीं सकता है। तार्किक लोग जो बोलते हैं भाई देखो मन का संबंध हो जाता है तो आत्मा में चैतन्य हो जाता है, ये तार्किक लोगों का सिद्धांत है। विचार करने पर ऐसा नहीं बनता है, हैं? क्यों नहीं बनता है भाई? सुषुप्ति में जाते हैं तो मन का कोई संबंध ही नहीं है। मन का संबंध मानेंगे तो जागृत मानना पड़ेगा, नहीं तो सपना मानना पड़ेगा। आगे समझ में? तो आत्मा में मन का संबंध नहीं होता सुषुप्ति में, फिर भी आत्मा चेतन है। तो चेतन की अनुभूति है कि नहीं? यदि नहीं होती तो उठने के बाद स्मरण कैसे हो रहा है? आम सुखम अस्वापम, बड़े सुख से सोया भाई। भान हुआ कि नहीं हुआ? किसका भान हुआ? आत्मा का भान हुआ भाई। किससे हुआ? अपने से हुआ, किससे होगा? ना मन से हो रहा है, ना जो सूर्य का प्रकाश है, ना जो है बल्ब का प्रकाश है, उसी का नाम क्या है? स्वप्रकाश है ना। तो देख लो भाई, इसीलिए हम लोग जो विचार करते हैं सनातन परंपरा में, हमारा आधार तो शास्त्र है। शास्त्र, शास्त्र के आधार पर विचार करना चाहिए। देखो हे नचिकेता किमत्र परिशिष्यते, कोई भी अवशिष्ट नहीं रहता है जो कि आत्मा से अतिरिक्त और किसी से प्रकाशित होता हो। इसलिए जो भी प्रकाशित होगा इस साक्षी चेतन से ही प्रकाशित होगा। इसलिए हे नचिकेता एतद् वै तत्, तुम्हारा जो जिज्ञासित पदार्थ आत्म तत्व है कि नहीं, तो कहते यही आत्म तत्व है जो स्वयं प्रकाश आत्मा है। अच्छा तो ये तो भाई व्यष्टि रूप से बता दिया, रूप का प्रकाशक, रस का प्रकाशक। अभी समष्टि रूप से बताते हैं। देखो जागृत में जितने ही पदार्थ है, स्वप्न में जितने पदार्थ है, उसी आत्मा से प्रकाशित होते हैं। तो आत्मा से प्रकाशित होते हैं तो ऐसा जान लेते क्या हुआ, वही आत्मा अपना स्वरूप ओके okay, की तो गड़बड़ी कहां पर होती है हम लोगों की? ये शास्त्र कह रहा है बस, है ना। ये शास्त्र प्रतिपाद्य अपना ही स्वरूप है, ये अनुभव करना चाहिए। आप देखिए भाई चतुर्थ मंत्र में देखो, श्रुति भगवती जो माता है ना, इनको आलस्य कभी नहीं आता है, तो हम लोगों को आलस्य आ जाता है श्रुति को कभी भी माता को जैसे आलस्य नहीं आता है, बच्चे को आलस्य आ जाता है, इसी प्रकार भगवती श्रुति को है ना आलस्य कभी नहीं आता है। इसलिए जब तक अपने स्वरूप में नहीं जग जाता है बालक, तब तक उपदेश करती रहती है। इसलिए मंत्राणाम न जामिता अस्ति कहते ना भगवान वासुदेव, मंत्रों में श्रुति में जामिता आलस्य नहीं आता है, ये जीव में आ जाता है। स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभो येनानुपश्यति महान्तं व्यहुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। देखो कहते हैं ये जो दोनों है अवस्था, स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था, भाई खा पी करके चले गए सपनों में तो सपना अवस्था आ गई, है ना। जागृत में फोटो खींच कर रखा है उसको देखता रहता है ना। लेकिन जो व्यक्ति सपनों में सो करके देखता है हाँ, लेकिन उस समय थोड़ी मालूम पड़ता है कि मैं सपनों को देख रहा हूं, मालूम पड़ता है क्या? हाँ, दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जागृत में जैसे दिख रहा है संसार, ऐसा संसार सपनों में भी दिखता है, हो गया ना। लेकिन जब उठने के बाद मालूम पड़ता है मैं सपनों में गया था, तो जागृत की दृष्टि से उसको सपना बोलते हैं। नहीं तो ऐसा किसी व्यक्ति को नहीं मालूम पड़ता कि मैं सपना सपने के लड्डू को खा रहा हूं, वास्तविक लड्डू को खा रहा हूं, हो गया कि नहीं। इसलिए ये जागृत में जो है ना ये भी ऐसा ही दिख रहा है। इसलिए जो भी दिखाई देगा दृश्य वो कैसा होगा? सपना ही होगा, और क्या होगा, है ना। तो ये भी सपना है कि नहीं? ये भी तो सपना है। जागृत भी कैसा है? हाँ, इसको आप ये कह सकते हैं भाई वो छोटा सपना है, ये बड़ा सपना है, इतना कह सकते हैं। तो योग वशिष्ठ में कहते हैं जो है भगवान राम से सुनाते हैं वशिष्ठ जी कि दीर्घ स्वप्नम इमम सर्वम दीर्घम वा चित्त विभ्रमम दीर्घम वा मनोराज्यम विद्येनम रघुनंदन। हे रघुनंदन, इसको भी तुम क्या समझ लो, दीर्घ सपना, सपना तो है लेकिन दीर्घ सपना है, और क्या है ना। तो ऐसा है, सपनों में ही कभी कभी हो जाता है। हाँ, क्या मालूम पड़ता है भाई जो है हम इस घर में 50 साल से है, नहीं होता है क्या? भले वहां पर एक मिनट में देखा लेकिन अनुभव कैसा होता है, हम 50 साल से एक कमरे में है बना करके, जागृत में भी ऐसा हो रहा है ना। तो इसलिए जो है सुरेश राजा जी बोलते हैं ना, वो सपना सपना कहो इसको, सपनों क्या बोलेंगे, सपना सपना, ये विशेषण लगा दिया, सपना से पहले एक सपना को जोड़ दिया, सपना सपना हो गया। और ये कैसा है, ये जागृत सपना हो गया, है ना। तो भले ही आप अपने आप को मान रहे हैं कि मैं जाग रहा हूं, लेकिन सोए हो तुम, अभी भी सोए हो। कहां पर सोए हैं भाई? अनादि माया में, अनादि माया में। ये अनादि माया में सो करके ये जागृत सपनों को देख रहा है, और स्वप्न जाता वहां पर भी माया है। देखो कहते हैं स्वप्न में जो कोई पदार्थ दिखता है ना, वो साक्षी चेतन से ही दिखेगा, और लौट आया जागृत में तो उसी चेतन से। तो ये स्वप्नावस्था, स्वप्नावस्था के पदार्थ, जागृत अवस्था, जागृत अवस्था के पदार्थ, ये आने जाने वाले है, और तुम जो देखने वाले हो, प्रकाशित करने वाले, तुम आने जाने वाले नहीं है। इसलिए आगे बोलते हैं उभो ये न अनुपस्थिति, ये न, जिस साक्षी चेतन आत्मा के द्वारा ये सारा का सारा भास रहा है, भास रहा है, और तुम्हारे में भास रहा है, बस भासने पर भी इसका कोई वास्तविक अस्तित्व तो नहीं है। ये तुमको जो समस्या मालूम पड़ रही है ना, ये केवल अनुभूति मात्र है, वास्तविक समस्या तुम्हारे में नहीं है। भाई कोई बोलेगा भाई शास्त्र की बात को हम कैसे मान लेंगे कि तुम्हारे में कोई समस्या नहीं है? जीवन भर समस्या ही समस्या है, बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक, वृद्धावस्था भाई खांसते खांसते जो है परेशान हो जाता है व्यक्ति, तो समस्या है कि नहीं है? समस्या नहीं है शास्त्र कहता है, अपितु समस्या की अनुभूति है। कैसे? जैसे मान लो कि ऐसा समझ लो कि भाई आपको बढ़िया भोजन खिला पिला दिया, और किसी कमरे में सुला दिया, चारों तरफ खिड़की बंद कर दी, दरवाजा बंद कर दिया, तो आप विचार कर लो भूख की समस्या है क्या? भूख की कोई समस्या नहीं है। तो भय की समस्या है क्या? चारों तरफ बंद है, देखो दरवाजा भी ठीक से लगा है, तो भय की भी समस्या नहीं है। लेकिन खा पी करके ओढ़ करके सो गए और सपना देखने लगे और घूमने जा रहे हैं जंगल में। जंगल में आप घूम रहे हैं मान लो, और दिग्भ्रमित हो गए आप, मार्ग से भ्रमित हो गए, मार्ग कहाँ है और ढूंढ रहे हैं मार्ग। और इस समय क्या है कि राजा के सिपाही पकड़ लिए चोर को ढूंढते ढूंढते, यही चोर है, और हाथ कड़ी बांध करके जो है आपको ले रहे हैं राजा के पास, और ऐसी जगह से ले रहे हैं जहां पर आपको पहले मान सम्मान मिला हो, ऐसे मोहल्ले में आपको पकड़ के ले रहे हैं और लोग चकित हो रहे हैं। मान लो ये क्या हो गए, ये ढोंगी है देखो ये साधु, हाँ हमारे सामने तो अपने को साधु समझ रहा था लेकिन अंदर अंदर देखो कितने चोरी कर रहा है। तो आपका चेहरा जो नीचे से जो है झुक रहा है अपमानित होकर के। अरे मान लो इस समय कोई साधु आ गया, साधु महात्मा आ गए, अरे व्यक्ति रो रहा है, भाई क्यों रो रहे हो, देखो हम चोरी नहीं किया है फिर भी लोग पकड़ कर ले रहे हैं। तो साधु ने कहा क्या समस्या है तुम्हें, कोई समस्या नहीं है, ये तो सपना है, सपना है बस, हाँ ये सपना का खेल सपना में दिख रहा है, कहां पर दिखा, तुम्हारे में दिख रहा है, हाँ। और आपने कहा कि देखो यही समय है उपदेश करने का, हाँ तुमको कोई समय नहीं मिला उपदेश करने के लिए कि इस समय आप उपदेश कर रहे हैं, और आपका सपना टूट गया मान लो उस समय टूट गया, तो आप विचार कर लो कि साधु की बात सच्ची निकलेगी कि आपकी अनुभूति सही होगी, है कि नहीं, साधु की बात सच्ची निकलेगी आपकी जो अनुभूति हो रहा है ना वो झूठी निकलेगी, है ना। इसी प्रकार जो संत महापुरुष कह रहे हैं शास्त्र का उपदेश करते हैं कि तुम्हारे में कोई समस्या नहीं, इसलिए भले ही आप अपने को अनुभव नहीं आता हो कि हमारा शुद्ध स्वरूप है, हमारे में किसी प्रकार का विकार नहीं है, ये सर्वभाव विकार शरीर का है, ऐसा अनुभव नहीं आने पर ही मान लेना चाहिए। आज तर्क करते रहेंगे, देखो हम निर्विशेष कैसे होंगे भाई, हम सुखी दुखी से रहित कैसे होंगे, ऐसा आप तर्क करते रहेंगे तो तर्क करते ही करने में ही लग जाएगा, कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए शास्त्र कहते देखो ये ना अनुपस्थिति, जिस साक्षी चेतन से स्वप्न की अनुभूति हो रही है और जागृत की अनुभूति हो रही है वो है आत्मा, तुम्हारा स्वरूप, और तुम्हारा स्वरूप ये परिच्छिन्न नहीं है। तो सारे की सारी समस्या क्या होती है, परिच्छिन्नता में होती है ना। जैसे साधु महात्मा का कोई भी स्थान नहीं होता है, जो असली साधु महात्मा होते हैं भले ही ऊपर से बोले कि हमारा ये स्थान है ये स्थान है, लेकिन विचारवान जो साधु है उनका कोई स्थान नहीं होता है, ये पक्की बात है, इसलिए घर छोड़ा है ना। तो साधु संत का जैसे कोई भी स्थान नहीं होता है वास्तविक, लेकिन थोड़ा सा भी किसी स्थान में ममत्व कर लिया तो अपना हो गया कि नहीं, अपना मान लिया, जब उतने स्थान को यदि अपना मान लिया तो उससे भिन्न क्या हो गया, पराया हो गया कि नहीं पराया, है ना। यदि परिच्छिन्नता यदि बुद्धि ना हो तो उनका कौन सा स्थान होगा, कोई स्थान नहीं, पूरा का पूरा ब्रह्मांड संत का होता है, ये दृष्टांत बता दिया। इसी प्रकार से जो विचारवान व्यक्ति होता है जो अपने आप को अपरिच्छिन्न समझता है उसमें कोई समस्या नहीं, देखो तो परिच्छिन्नता बुद्धि वाले संत में जैसी समस्या होती है वो कह कि नहीं, ममत्व हो गया तो फिर क्या होगा, तवत्व भी हो जाएगा, तव बुद्धि भी हो जाएगी, है ना। इसलिए यहां पर कहते हैं कि तुम्हारा स्वरूप परिच्छिन्न नहीं है अपितु अपरिच्छिन्न है। चलिए यहां पर बोलते महांतम कि आत्मा कैसा है, अपरिच्छिन्न है, सबसे बड़ा आत्मा है और उसी में सब भास रहा है। परिच्छिन्न जो चित्र है, जागृत का चित्र, सपना का चित्र, एक आत्मरूपी पर्दे में भास रहा है, और वही जो आत्मा है पर्दारूपी आत्मा है ना, वो अपरिछिन्न है, वही सत्ता दे रहा है और सबको प्रकाशित भी करता है, वही सबका अधिष्ठान है। इसलिए यहां पर बोलते हैं विभुम आत्मानम, विभु मतलब अधिष्ठान, विविधम भवन्ति अस्मात् इति विभु। विभु का अर्थ व्यापक भी होता है, लेकिन यहां पर व्यापक अर्थ नहीं है, अधिष्ठान है ना। इसलिए हमारे वैदिक परंपरा में जो चेतन होता है वो अधिष्ठान भी होता है, जो ये सत्ता देता है वो प्रकाशित भी करता है। इसलिए ऐसे जो अपरिछिन्न अधिष्ठान आत्मा, यही अपना स्वरूप, इसको जिसने साक्षात्कार किया है ना, अहम अस्मि ब्रह्म रूप से जिसने अपरोक्ष साक्षात्कार किया, उनको किसी प्रकार का दुख, किसी प्रकार की समस्या अपने जीवन में नहीं हो सकती है, जीते जी ही मुक्त हो जाता है। इसलिए आगे कहते हैं धीरह न सोचती, धीर पुरुष को ही ज्ञान होता है, अधीर पुरुष को तो परोक्ष ज्ञान भी नहीं हो सकता है, श्रवण आदि का अधिकारी भी नहीं बन सकता है। इसलिए ज्ञान का फल ही बता दिया, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, परमानंद की नित्य अनुभूति, इसी का नाम क्या है मोक्ष, इसी का नाम क्या है परम पुरुषार्थ, इसी के लिए ही मनुष्य जन्म मिलता है। आगे का विचार कल करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।